ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अभी भागवतम कक्षा मॉर्निंग क्लास में। और ये चूँकि हम अभी राम कथा चल रहे हैं तो ये सीता राम और लक्ष्मण तीनों का कंप्लीट प्रणाम मंत्र है जो कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। और ये एक रामायण का एक श्लोक है तो अब इसका उच्चारण करेंगे पहले। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। धन्यवाद। इसका जो अर्थ है मैं उस भगवान रघुनंदन को प्रणाम करता हूँ जिनकी दक्षिणे मतलब जिनके दाईं तरफ, लक्ष्मणों मतलब लक्ष्मण हैं, बामे मतलब बाईं तरफ जनकात्मजा जनक की पुत्री जो है सीता है, पुरतो का मतलब होता है सामने, पुरतो मारुतिर मारुति हनुमान जी का एक नाम है कि उनके सामने जो हनुमान जी बैठे हैं ऐसे भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। ये इसका अर्थ है श्लोक का। आपदाम अपहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। हरे कृष्णा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस दूसरे सत्र में। और वैसे तो राम कथा हमने मेरे बचपन से ही किसी आज कोई वैसा भारतीय नहीं होगा जिसने ना सुना हो, हर व्यक्ति ने बचपन से ही सुना हुआ है राम कथा के बारे में। हम सब जानते भी हैं क्या हुआ कैसे हुआ, 5 मिनट में पूरी राम कथा बता सकते हैं। और एक श्लोक भी है ऐसे जिसमें पूरी राम कथा को एक श्लोक में समराइज कर दिया गया है, पूरे राम कथा को। तो उस तरह से हम भगवान राम की जो ये कथा है, हालांकि भगवान राम जन जन के नायक हैं और एक कण भारत वर्ष के कण कण में विद्यमान हैं, कोई ऐसी जगह नहीं कोई ऐसा घर नहीं, यहाँ तक कि हिंदुओं के अलावा भी जो दूसरे लोग हैं वो भी भगवान राम को राम के रूप में भगवान के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, कृष्ण को नहीं करते पर भगवान राम को करते हैं। वजह कि भगवान राम का जो चरित्र रहा है जिस तरह का और उस तरह से जो जिस जैसा उन्होंने पूरे जीवन में जो शिक्षाएं दी उसके हिसाब से भगवान राम ज़्यादा लोकप्रिय हैं। एक हम आम तौर पर देखें भारतवासी में तो ज़्यादा खास करके जो हिंदी बेल्ट राज्य हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हैं। तो भगवान राम के विषय में वैसे भगवान राम जो है सारा जीवन जो है वो बाह्य धर्म का पालन करते रहे। धर्म दो तरह का होता है, एक बाह्य और एक आंतरिक। तो एक्सटर्नल जो है भगवान ने सारा जीवन जो है एक्सटर्नल उसका धर्म का प्रयोग किया, बाह्य धर्म का, और अपने तीनों भाइयों से आंतरिक धर्म का पालन करवाया। देखिए भरत लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न तीनों से किसका पालन करवाया, आंतरिक धर्म का, और स्वयं क्या पालन किया, बाह्य धर्म, क्योंकि उनके लिए कुछ आंतरिक धर्म नहीं था इसलिए उन्होंने बाह्य धर्म का पालन किया क्योंकि वो संपूर्ण सत्य हैं। तो और हम देखते हैं पूरे आप चरित्र में देखेंगे भगवान राम जो सारा जीवन रहे वो कभी माता के आदेश माना, कभी पिता के आदेश माना, कभी गुरु के आदेश से काम किया, कभी सलाहकारों के किस तरह से, और पूरा जीवन इसी तरह से बीत गया। और ये सब कुछ एक्सटर्नल है, बाहरी है। आप दूसरी तरफ देखो, और तभी भगवान राम को मॉरल और एथिक्स मतलब प्रिंसिपली नैतिकता में और इन चीज़ों में उनकी शिक्षाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और उधर लक्ष्मण ने किस चीज़ का परिचय दिया कि सारा जीवन भगवान के लिए, अगर जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, जिस तरह से भी मौका मिले, भगवान का साथ नहीं छोड़ना है। उठते बैठते खाते पीते दिन रात हर वक्त जो है वो भगवान के साथ रहते थे, इनसेपरेबल। और भरत से इन्होंने किस धर्म का पालन करवाया कि भगवान के लिए किसी भी चीज़ का परित्याग किया जा सकता है, वो चाहे बड़े से बड़ा राज्य क्यों ना हो या बड़े से बड़ा कोई रिश्ते में कोई व्यक्ति क्यों ना आ रहा हो, अगर वो भगवान को प्राप्त करने में बाधा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये सारा जीवन भरत इसको लेकर जीते रहे। शत्रुघ्न से क्या पालन करवाया कि भगवान की सेवा ठीक है, पर भगवान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेवा है भक्तों की। और यही शत्रुघ्न के जीवन का उद्देश्य यही था कि भरत की आज्ञाओं का पालन करते उन्होंने पूरा जीवन बिता दिया, कि वो सारा जीवन जो है भरत की। इवन भगवान ने जब अयोध्या का राज्य, अब दूसरे का राज्य था वो, तो जब भगवान ने भरत को दिया और भरत नहीं माने कि मेरा राज्य नहीं है, तो भगवान ने कहा ठीक है तुम मेरी तरफ से इसकी देखरेख करो, मेरी तरफ से इसको चलाओ। तो वो भगवान ने उस राज्य, सॉरी भरत जी ने उसको राज्य को कैसे चलाया, शत्रुघ्न के माध्यम से। केवल वो आदेश देते थे नंदीग्राम से और शत्रुघ्न उसको एग्जीक्यूट करते थे। तो सारा जीवन तो तीनों भाइयों ने आंतरिक धर्म का पालन किया और भगवान ने स्वयं एक्सटर्नल का। तो हम पूरे रामचरित, क्योंकि भगवान राम का चरित्र बिल्कुल कहीं से भी किसी भी तरह का जो है उसमें कोई एक्सटर्नली भी आप कोई कमी नहीं निकाल सकते, जबकि भगवान कृष्ण का चरित्र बिल्कुल अलग है। उन्होंने जहाँ जहाँ भी मौका मिला उस नैतिकता को काट दिया, तोड़ दिया, है ना। इसीलिए भगवान लीला पुरुषोत्तम है कृष्ण और राम मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हमेशा मर्यादा में बंधे रहे कि ये करना है कि नहीं करना है, पूछ के करना है, कैसे करना है। और भगवान ने, कृष्ण ने इस बात की कभी परवाह ही नहीं करी। तो हालांकि है भी यही भौतिक भक्ति में, भक्ति के नियम के सामने और भक्ति में मॉरलिटी का महत्व है, पर अगर भक्ति में वो आड़े आता है वो मॉरलिटी, तो निश्चित रूप से उसको तोड़ देना चाहिए। इसलिए भक्ति के रूल ज़्यादा बड़े होते हैं नैतिकता के रूल से। इसीलिए कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं, क्योंकि उन्होंने तोड़ा भी तब भी वो सब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं। राम ने कभी नहीं तोड़ा इस मॉरलिटी को, कभी इस नैतिकता को, एथिक्स को कभी उन्होंने परित्याग नहीं किया। एनीवे, तो इस तरह से भगवान जो है वो पूरा सारा जीवन जो है अपना इन्हीं लोगों की जो है वो खास करके जो बाह्य धर्म का पालन करने में बिताया। और हालांकि ये कथा में पता नहीं कई बार मुझे सोच रहा था कहाँ से शुरू करूँ, ये कुछ पता ही नहीं था कौन सा प्रसंग ले, क्योंकि आप पूरे प्रसंग तो कोई भी नहीं बता सकते। तो जितना जितना पॉसिबल है उतना उतनी चर्चा कर लेंगे। तो जो भगवान, हालांकि जो रामायण की रचना हुई थी, वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना करी, तो वाल्मीकि जी को भी ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने रामायण की रचना की थी। और जब वो रामायण की रचना कर रहे थे तो उनको ये लगा कि मुझे क्यों चुना गया, मैं ही क्यों रामायण को जो है मैं क्यों लिखूं। तो फिर जो है ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि तुम्हें क्यों चुना गया है, और तुम क्योंकि तुम इस आगे आने वाले समय में इस लीला के एक भाग मतलब इस लीला के एक पार्ट बनोगे, इसीलिए तुम्हें ये चुना जा रहा है इसके लिए। और वाल्मीकि जी ने जब ये रामायण लिखना शुरू किया था तो भगवान तकरीबन 40 वर्ष के थे, 39-40 के आसपास। तो उन्होंने उस पूरी और वाल्मीकि रामायण में हम देखते भी हैं करीब 24,000 श्लोक हैं और 640 चैप्टर हैं उस वाल्मीकि रामायण का। और वाल्मीकि रामायण के जो 24,000 श्लोक है वो ब्रह्म गायत्री के एक एक अक्षर से शुरू होता है, प्रत्येक 1,000 श्लोक। ब्रह्म गायत्री में 24 अक्षर हैं और ब्रह्म गायत्री के प्रत्येक अक्षर से ये उनका 1,000 श्लोक शुरू होता है। जैसे एक श्लोक से 1,000 श्लोक खत्म हुआ तो दूसरे वाले अक्षर से फिर दूसरे 1,000 श्लोक शुरू होगा। इस तरह से 24 अक्षरों के साथ 24 जो उसमें जो है हजार मंत्र के द्वारा उन्होंने भगवान राम की लीलाओं का गुणगान किया। भगवान राम के विषय में वैसे बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं, जैसे आप भगवद गीता के बारे में एक ही ग्रंथ आपको दिखाई पड़ता है भगवद गीता, उसी के ऊपर कमेंट्री है और ये है सब कुछ है, पर रामायण में ऐसा नहीं है। रामायण लिखने वाले बहुत सारे मुनि हुए थे, कंभ मुनि ने रामायण लिखी तो जो कंभ रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, फिर अध्यात्म रामायण है, बैरवे रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, इस तरह से कुछ ऐसे नाम है, तकरीबन इस तरह से 100 रामायण मिलते हैं। तो जिसमें अलग अलग तरह की घटनाओं का समावेश किया गया है, कहीं कहीं कुछ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। हालांकि भगवान जो राम की लीलाओं में जो आप शुरू शुरू में देखेंगे तो बाल चरित्र यानी बाल लीला जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है, न तुलसीदास ने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया, न वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने ज़्यादा फोकस किया किसी ज़्यादा इस पर। वाल्मीकि जी ने पूरे बाल लीला को केवल 10 श्लोक में बता दिया, 10 श्लोक में बता करके रफा दफा कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था राम भगवान राम का जो चरित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम का, वो कहीं से उसको इससे नुकसान ना पहुँचे इस बाल लीला को बताने से। ज़्यादातर के इसमें यही था उनका जो, क्योंकि ये सारी चीज़ें भगवान के बाद में लिखी गई हैं, तो ज़्यादातर जो लिखने वाले थे उनको लगता था कि कहीं ये ना हो कि भगवान के राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है उस बाल लीला की वजह से कुछ उसमें इधर उधर हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादातर लोगों ने लिखा नहीं है इसको। हालांकि जो श्री संप्रदाय अर्थात रामानुजा संप्रदाय का जो नॉर्थ इंडियन एक्सपेंशन है, रामानंदी संप्रदाय है, उसमें राम भगवान राम को ज़्यादा पूजते हैं और भगवान राम को ही उन्होंने अपना आराध्य देव माना हुआ है, और वो मानते हैं कि भगवान राम जो है भगवान विष्णु के एक्सपेंशन हैं, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में भी कुछ इसी तरह की बातें लिखी गई हैं कि भगवान राम स्वयं जो है वो विष्णु के एक्सपेंशन थे, और जो लक्ष्मण जी अनंत शेष हैं, और भरत जी भगवान के सुदर्शन चक्र हैं, और जो शत्रुघ्न हैं वो भगवान के 5 जन शंख हैं। तो ये इस तरह से, तो वो लोग इनको, हालांकि वो लोग बाल लीला में जो है वो बहुत सारी कथा सुनाते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग चीज़ें, बड़ी सारी चीज़ों का समावेश किया हुआ है अलग अलग उसमें, और फिर भी मैं एक आध चीज़ जो आपको बता पाऊँगा, ज़्यादातर मैंने मोस्टली वाल्मीकि रामायण और कंभ रामायण से लिया हुआ है। तो वो जिस इसमें एक जो उसमें आता है कि भगवान जब अपने अवतरित होने के कारण, हम सब जानते हैं बहुत सारे कारण भी हैं और कई की चर्चा भी है, हम सब जानते भी हैं, पर एक जो कारण मुझे थोड़ा सा लगा, जो थोड़ा अलग सा लगा, तो मैंने कहा कि आप सबसे को बताने का प्रयास करूंगा, वो भगवान विष्णु एक बार जो है लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही होती हैं, तो लक्ष्मी जी भगवान से पूछती हैं कि कोई ऐसा समय होगा कि जब हम दोनों एक अकेले मिलेंगे, जब देखो आपके भक्ति हमेशा होते हैं चारों तरफ से घेरे होते हैं, कोई एक्सक्लूसिव समय है आपके पास मेरे लिए? श्री राधा राधिका वन भगवान की, श्री जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी की। तो उन्होंने कहा कि कोई एक्सक्लूसिव समय है आपके पास जो मेरे लिए स्पेशल, आप मेरे लिए हो खाली, जिसमें आपके ये सारे कोई भी ना हो, न सुदर्शन, न ये शंख, न ये अनंत शेष, कोई भी नहीं होना चाहिए। तो कहा ऐसा है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम अवतार ले लेते हैं, है ना, और वहाँ पर कुछ ऐसी जगह ऐसे चुनेंगे कि ताकि हम आराम से जो है एकांत में रह सकें। तो भगवान ये सोच करके जो है भगवान राम के रूप में आ गए। तो हालांकि जो अयोध्या जो है वो बहुत समृद्धशाली नगर था, और ये कौशल देश की राजधानी थी अयोध्या, और अयोध्या की जो लंबाई चौड़ाई है 12 योजन बाय 3 योजन, मतलब 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा था अयोध्या, और एक योजन मतलब 8 माइल्स, 8 और 1 माइल में तकरीबन 2.5 किलोमीटर शायद इतना ही होता है, 1.5 किलोमीटर। तो इस तरह से जो है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि अयोध्या की जो राजधानी थी वो बहुत सुंदर थी और बहुत समृद्ध था अयोध्या हर तरह से। और अयोध्या केवल समृद्ध नहीं था, वो बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से सुरक्षित भी था, बाह्य दुश्मनों से भी और आंतरिक से भी। तो आंतरिक से कैसे है कि काम क्रोध लोभ मोह जो है ये भी किसी अयोध्यावासी को सताते नहीं थे किसी भी तरह से, और इतना समृद्धशाली नगर था। इवन जो महाराज दशरथ थे वो रघुवंश में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग राजा थे, इतना राज्य किसी ने नहीं किया जितना महाराज दशरथ जितने समय तक राजा रहे उस अयोध्या नगरी में। फिर भी जो है उन्होंने अब लेकिन सब कुछ समृद्ध था बट उनके पास कोई संतान नहीं थी, तो कई बार बहुत उनको बहुत दुख होता था। तो लेकिन उनको लग रहा था कि समय बीतता जा रहा था फिर उनका क्या करूं कोई सूझ नहीं रहा था। तो एक बात मैं बताना भूल गया कि उसमें जो अयोध्या नगरी की जो ऐश्वर्य था वो ऐश्वर्य कुछ इस तरह का था कि हर एक प्रजा जो भी अयोध्या की प्रजा थी उसको ये आदेश था कि कभी भी कुछ भी, हालांकि अयोध्या की जनता को कभी मांगने आना नहीं पड़ा दशरथ के पास किसी भी तरह से, बल्कि एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा था 12 साल का तो दशरथ को पता भी नहीं चला। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि दशरथ के जो मिनिस्टर्स थे वो महाराज दशरथ को छोटी मोटी बातों के कहीं कोई लिए इन्फॉर्म नहीं करते थे। तो 12वां साल जब प्रवेश हुआ उसका अकाल का, तो उन्होंने सोचा महाराज को सूचना देनी चाहिए। वे 11 वर्ष तो बीत गए, 12वां साल चढ़ गया और न अयोध्या की राजा ने कभी आकर के शिकायत करी कि बहुत कमी है और अकाल पड़ा हुआ है और आप कुछ देख नहीं रहे, क्योंकि इतना समृद्ध था सबके पास बहुत कुछ होता था। और इसके अलावा जो राजा का राजकोष था अर्थात भरत राज दशरथ जी का, वो हमेशा खुला रहता था, जिसको जितना चाहिए आकर के ले जाए। तो इस तरह की समृद्धि थी वहां पर। तो उनको पता लगा भाई दशरथ को कि कैसे जो है क्यों मतलब हमारे राज में अकाल पड़ा क्यों। तो ज्योतिषियों को बुलाया गया तो ज्योतिषियों ने कहा महाराज शनि की टेढ़ी नजर है आपके राज के ऊपर। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो कहा चलो ठीक है शनि के ऊपर आक्रमण करते हैं ना। उस समय यही होता था राजाओं के पास, और दशरथ इसमें कैपेबल भी थे क्योंकि उनको जो है वो कई बार स्वर्ग में भी बुलाया जाता था मदद करने के लिए, इंद्र बुलाते थे उनको। एक बार सांबासुर का वध नहीं हो रहा था तो इंद्र ने उनको मैसेज भेजा कि कृपा करके आइए हमारी मदद कीजिए। तो इसी युद्ध में केकई ने उनकी मदद करी थी अगर सबका आपको याद, तभी उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। एनीवे ये बिल्कुल अलग कथा है। तो उसमें जो है वो जब शनि के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकले तो उनका जो रथ है वो उड़ा जा रहा था शनि प्लैनेट की तरफ, पर जैसे ही शनि प्लैनेट के नज़दीक जाने लगे कि शनि ने अपनी दृष्टि और तीक्ष्ण कर दिया तो महाराज दशरथ जो है वो उनका रथ पलट गया और वो नीचे गिरने लगे। गिरते इससे पहले कि गिरते एक चमत्कार हो गया, एक पक्षी ने जो है अपना पंख फैला दिए और महाराज दशरथ का जनक उस पंख के ऊपर आकर के टिक गया। और ये पक्षी कौन था? जटायु। और जटायु ने जो है उसको रोक लिया अपने पंख के ऊपर। तो उन्होंने कहा महाराज दशरथ आप अकेले शनि से नहीं जीत पाओगे, मैं आपकी सहायता करूंगा, हम दोनों चलते हैं। और इस तरह से जटायु और महाराज दशरथ दोनों चल पड़े शनि प्लैनेट की ओर दोबारा। तो जब दोबारा गए तो बहुत नजदीक पहुंच रहे तो शनि बाहर आ गया अपने प्लैनेट से, कह रहा कि जाओ मैंने अयोध्या को छोड़ दिया, अब मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता, मैं काफी समय से तुम्हारे पर बुरी दृष्टि थी, मैंने अब अयोध्या को मुक्त कर दिया, जाओ। तो अब दशरथ और वो जो जटायु थे दोनों वापस आ गए। तो महाराज दशरथ ने बोला क्या चाहिए, जैसे राजा का अनुरोध होता है ना, क्या चाहिए वरदान मांगो, जो मांगोगे दूंगा। हालांकि ये थोड़ा कई बार प्रॉमिस करना, ऐसे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए जो हम दे ना सकें, है ना। और ये प्रॉमिस भी केवल ये जो वादा है वो केवल भगवान निभा सकते हैं कि जो चाहिए मैं दूंगा, कोई राजा कैसे निभा सकता है कि आपको जो मांगोगे मैं दूंगा। एनीवे दशरथ ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा महाराज मैं जो चाहता हूँ आप दे दोगे, उन्होंने कहा बिल्कुल दूंगा। कहा ठीक है, आपका बेटा मेरा बेटा होगा, अब समझ रहे हो, उन्होंने क्या बोला, आपका बेटा मेरा बेटा होगा, जो कर्म वो आपके लिए करेगा वो मेरे लिए भी करेगा। उस समय दशरथ की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने कहा ठीक है, संतान तो थी नहीं, उनका ठीक है ओके, और उन्होंने जो है इसको दे दिया, वो बोल दिया हाँ बोल दिया। ये बात आई गई हो गई, और इसके बाद फिर जो है दशरथ वापस आते हैं, और फिर यज्ञ होता है, और उसने वो पुत्र भी प्राप्त होता है, और पुत्र के प्रति इतने महाराज दशरथ इतने ज़्यादा जो है वो, हालांकि वो कौशल्या जी को इतना अधिक पसंद नहीं करते थे, 353 रानियों में से कौशल्या सबसे बड़ी थी है ना, और ये तीन रानी प्रमुख थी, 350 रानियां उनकी और भी थी, जो कि उन्होंने परशुराम से बचने के लिए किया था। जितनी बार भी परशुराम अयोध्या की तरफ से गुजरते थे तो महाराज दशरथ उनका सामना नहीं करना चाहते थे कि ये मुझे, और वो चाहते थे कि वो दशरथ को मारना चाहते थे परशुराम, और जितनी बार वहां से गुजरे उतनी बार उन्होंने एक राजकुमारी को किसी पड़ोसी राज से बुलाया और उनके साथ विवाह करने लगते थे। तो परशुराम जी का एक संकल्प था कि जो व्यक्ति स्त्रियों से घिरा होगा, स्त्रियों के बीच में होगा, मैं उसके ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। तो 350 बार परशुराम जी उस अयोध्या की तरफ से गुजरे, और 350 बार उन्होंने जो है एक राजकुमारी से विवाह किया। तो ये जो है वो, तो उनकी 353 रानियां इस तरह से थी। तो उस 353 रानियों में, लेकिन वो कौशल्या के इतना अधिक जो है वो चाहते नहीं थे। आप कौशल्या जी के महल के आगे से हमेशा राजा दशरथ के महल में चले जाते थे, परंतु आज जब राम का जन्म हुआ था है ना, भगवान राम का जन्म जो है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, और ये 9वीं तिथि कहते हैं कि 9वीं तिथि सबसे ज्यादा एवर फ्रेश रहता है। 9 को आप जैसे 9 को किसी भी से मल्टीप्लाई करो 9 ही बचता है ना, 9 का 9 दूना 18, 8 1 9 9 3 27, 7 2 9, 9 4 36, 6 3 9, अब पूरे जिसमें देखो तो कहते हैं कि ये 9 नंबर्स जो है एवर फ्रेश है। इसीलिए भगवान राम की कथा जो है एवर फ्रेश रहेगी हमेशा, कलयुग में हमेशा भगवान राम की कथा जो है फ्रेश वो भी रहेगी। वो आचार्य लोग बताते हैं उसमें कि इस तरह से जो है भगवान ने इसलिए 9वीं तिथि को चुना। तो इसमें जो है भगवान जब उसमें प्रकट हुए, उसके अगले दिन पुष्य नक्षत्र में कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत था, और पुष्य नक्षत्र था उस दिन, तो 10वीं तिथि को भरत उत्पन्न हुए, और उसी दिन शाम को अश्लेषा नक्षत्र में, अश्लेषा जो है नक्षत्र वो सर्प का प्रतीक है, तो अश्लेषा नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों जो है वो प्रकट हुए। इस तरह से जब चारों भाई प्रकट हुए और उसमें चलते रहे, और हालांकि दशरथ जो है वो घंटों घंटों अयोध्या जी के सॉरी कौशल्या जी के महल में जाकर के बैठते थे, उनको लगता था कि मैं कितना कृतज्ञ मतलब कौशल्या के लिए क्या दूं और क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौशल्या को मैंने इतनी उपेक्षा करी, आज कौशल्या इतने राम से इतने आकर्षित होते थे, देखते रहते थे घंटों घंटों देखते रहते थे। तो एनीवे जो उसके बाद जब राम बड़े हुए, मैं आपको कुछ प्रमुख चीज़ें बता रहा हूँ जो हो सकता है कि कम सुनी गई चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ आपको। तो राम जब थोड़े दिन बड़े हुए, राम लक्ष्मण 3-4 साल के करीब थे, तो अपने राजमहल के जो पार्क है उसके अब गार्डन उसमें खेल रहे थे, और चारों भाई जो है मिट्टी का बॉल बना के एक दूसरे को मार रहे थे। तो आपस में खेल रहे थे, तब तक कौशल्या आ गई, क्या कर रहे हो, सब मिट्टी लगा लिया सारे शरीर में, तो लिया कौशल्या को ही मारना शुरू कर दिया, खूब मारा चारों भाइयों ने, कौशल्या को भूत बना दिया। अब केकई आ गई, केकई को भी ऐसी मारना, केकई को ही भूत बना दिया। फिर सुमित्रा को भी ऐसी कर दिया, वो दूसरी रानियां आने लगी, इन सबको साथ ऐसे कर दिया, और जो भी आ रहा था उसको खूब, जो बच्चे पूरे मस्ती में थे चारों। इसी समय क्या होता है कि वो कुब्जा आती है मंथरा उस पार्क के अंदर देखने के लिए, किसको, सारी रानियां उधर जा रही हैं। भगवान राम ने क्या किया, फटाफट एक बॉल बनाया मिट्टी का और उसके कुबड़ के ऊपर मारा, और खूब हंसने लगे, सब हंसते, सारे राजा कुमार हंस रहे हैं, रानियां हंस रही हैं, सब हंस रहे हैं, और उसको अच्छा नहीं लगा, उसको बहुत बुरा लगा, उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया बहुत। ये बात केकई ताड़ गई। ये केकई के नगर से आई थी, वो यहाँ की राजदासी नहीं थी, वो दासी नहीं थी एक्चुअली, वो चेरी थी। दासी दासी और चेरी में अंतर होता है, चेरी इज असिस्टेंट ऑफ दासी। तो चेरी थी वो, आई कहाँ से थी? केकई से। वो वहाँ यहाँ की नहीं थी, कौशल की नहीं थी, अर्थात अयोध्या की दासी नहीं थी, वो वहीं से आई थी जो अशुपति ने भेजा था। केकई के पिता का नाम था अशुपति, तो अशुपति ने उनको भेजा था केकई के साथ, क्योंकि इसके बोलते थे ये बुद्धिमान है, तेरे को सिखाएगी समझाएगी। एनीवे तो उनको भेज दिया था साथ में, तो उसको बहुत बुरा लगा। और शायद पहली बार था कि भगवान राम ने किसी के साथ मजाक किया था, और ये मजाक भगवान राम को बहुत महंगा पड़ा। 14 वर्ष का वनवास जो है इसी मजाक की वजह से भगवान राम को मिला। कहते हैं अपने छोटों से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, छोट बुद्धि वाले से, जो लो कॉन्शियसनेस का व्यक्ति है उससे कभी मजाक नहीं करना चाहिए, इन तो बहुत भारी पड़ता है। और ये मजाक भारी पड़ा था द्रौपदी जी को भी, कितनी छोटी मजाक करी थी उन्होंने, है ना। लेकिन दुर्योधन उसको भूल नहीं पाया। घाव बड़ा अपमान का निस्दिन तरपे प्राण, मनिमाना प्रतिशोध ही उसका करे निदान। जो अपमान का घाव है वो बड़ा खतरनाक होता है, जब तक व्यक्ति प्रतिशोध ना ले वो अपमान को भूल नहीं पाता। और ये कुब्जा 20 साल तक इस बात को बनाए रखी, वो राम से चिढ़ती थी, तभी से वो राम को पसंद नहीं करती थी। सारे अयोध्या सारे लोग राम को पसंद करते थे, हर व्यक्ति सिवाय मंथरा के, वो राम को पसंद नहीं करती थी। तो ये जो है कैसे हम देखते हैं कि भगवान राम ने, तो हमें कौन सा, आप देखिए उसमें जो द्रौपदी जी ने छोटी सी मजाक करी थी, बट दुर्योधन भूला नहीं उसको, और जब मौका मिला तो उसने बदला लिया उसका। इसी तरह से कई बार हम पता नहीं कौन क्या व्यक्ति किसका हम मजाक उड़ा दें, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इवन महाराज चित्रकेतु आप देखो, बहुत उन्होंने भगवान शिव का कोई मजाक नहीं उड़ाया था एक्चुअल में, बल्कि एक तरह से वो उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कि क्या व्यक्ति है अपनी जंघा पर माता पार्वती को बिठा करके और कथा कर रहे हैं, कैसे एग्जॉल्टेड व्यक्ति है। बट वो थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में था, और ये बात माता पार्वती को अच्छी नहीं लगी, तो परिणाम क्या हुआ, बहुत खतरनाक। तो हम देखते हैं जहाँ कहीं भी अगर वो व्यक्ति जो है अगर उस चीज़ को बुरा मान जाए, तो हम किस क्या कहाँ पर और किस तरह से बोलना चाहिए, इस अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या पता कौन सा व्यक्ति किस तरह, और हमारा माइंड भी ऐसा है, हम पता नहीं क्या कब किसके प्रति ऑफेंस कर दें कुछ पता नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे साथ कुछ होगा तो हम पूरे अपने असलियत रूप में आ जाते हैं, मैं वही हूँ चिंता मत कर बदला नहीं हूँ। तो इस तरह से जैसे उसके बाद ये बात हो गई, और इस तरह भगवान राम के लिए एक वो तैयार हो गया, एक तरह से समझ लीजिए प्लॉट तैयार कर दिया उसने। तो उस भगवान राम उसके बाद गुरुकुल में जाते हैं, और हालांकि भगवान राम और लक्ष्मण का पेयर शुरू से ही था, भगवान लक्ष्मण के बिना रहते नहीं थे, न लक्ष्मण राम के बिना रहते थे कभी, और भरत शत्रुघ्न के बिना नहीं रहते थे, या शत्रुघ्न भरत के बिना नहीं रहते थे। इसमें एक बार पहले भी इससे जब वो भगवान थोड़े और छोटे से थे और पालने में थे, तभी एक घटना हुई थी कि चारों भाई रोने लगे, बहुत तेज तेज रो रहे थे, खूब रो रहे थे, सॉरी रानियाँ आ गई वहाँ पर, सब ने चुप कराने का प्रयास किया तो कोई बिल्कुल चुप हुए ही नहीं, रोते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं। फिर मटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस, फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा वशिष्ठ जी को बुलाओ, अब चुप हो ही नहीं रही, पूरे रानियाँ लग गई, सारे लोग आ गए, अब क्या होगा। फिर वशिष्ठ जी को बुलाया गया, तो वामदेव और वशिष्ठ दोनों कुलगुरु थे इसके रघुवंश के, तो दोनों जो हैं वो वामदेव और वशिष्ठ दोनों आए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, रोते रहे देखते रहे उनको बड़े ध्यान से, फिर देखते देखते थोड़ा सोचते भी रहे, फिर उन्होंने क्या किया, जो लक्ष्मण का क्रेडल था उसको खींच करके राम के पास रख दिया, और शत्रुघ्न वाला जो है उन्होंने भरत के पास खींच दिया, तो बच्चों का जो रोना था वो कम हो गया, रुका फिर भी नहीं और कम हो गया। तो फिर भरत वशिष्ठ जी सोचने लगे अब क्या करूं, फिर थोड़ा सोचते रहे हैं, उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण को उठाया और राम के क्रैडल में रख दिया, राम के पालने में रख दिया, दोनों चुप। शत्रुघ्न को उठाया और भरत के उसमें डाल दिया, दोनों चुप। और फिर उनको समझ में आया कि ये दोनों का पेयर है, ये इसके बिना नहीं रहेगा और ये इसके बिना नहीं रहेगा। तो ये पेयर जो है वो चलता ही रहा काफ़ी समय। वो तो भगवान जो हैं, उसके बाद थोड़े समय के बाद भगवान को गुरुकुल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, तो दशरथ भी चले जाते हैं पढ़ने के लिए। अब जो कि मैं भी रहूँगा यहाँ पर। अब वशिष्ठ जी ने कहा भी अजीब मतलब बच्चों के साथ उसका कोई बाप आता है क्या पढ़ने के लिए? जैसा वशिष्ठ जी ने कहा क्यों आए हो आप? कह रहा नहीं, मैं भी इसको पढ़ते हुए देखना चाहता हूँ ना, आप मुझे रहने दो। कहा नहीं, सवाल ही नहीं उठता, आप जाओ यहाँ से। वो बड़ा खराब लगा उनको, बशीर जी कहने जाओ यहाँ से। कहा महाराज आप जाओ यहाँ से। और वशिष्ठ जी जो करने वाले थे वो अगर वो देख लेते तो उनको भी बड़ी खराब लग उनको बड़ा खराब लगता, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने किसी तरह से महाराज दशरथ को भेज दिया वापस। अब छोटे छोटे तो बच्चे थे चारों को बिठाया, वशिष्ठ जी ने दंडवत प्रणाम किया पहले तो, और फिर परिक्रमा लगाई, फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा है ना, आप तो समस्त वेद और ये उपनिषद सब आपका गायन करते हैं, मैं क्या पढ़ाऊंगा, बट मैं इसीलिए आपके वंश का कुल पुरोहित था, मुझे मालूम था एक दिन आप यहाँ इस वंश में प्रकट होंगे। आपको पता कब से वो पुरोहित थे? भगवान राम 39वें राजा थे इस वंश के, रघुवंश के 39th किंग, मतलब 38वें किंग थे दशरथ। और ये पुरोहित थे 17वें पीढ़ी से, जब महाराज दिलीप और अंशुमान राजा हुआ करते थे उस समय से ये कुल इसके वो थे, शुरू से आप एक तरह से समझ लो शुरू से कुल गुरु थे। क्यों और क्यों रहे वो खुद ही बोलते हैं कि उपरोहित का जो कर्म है ये बहुत निंदक है। वशिष्ठ जी कहते हैं ये जो कर्म करता हूँ मैं ना बहुत निंदक कर्म है, पर मैं इसीलिए करता रहा कि मुझे मालूम था आप एक दिन आप प्रकट हो गए इस वंश में। तो भगवान के लिए उतनी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे वशिष्ठ जी कि भगवान इस एक दिन यहाँ पर, और आज उनको मौका मिला था भगवान की स्तुति करने का, प्रणाम करने का, भगवान को छूने का, प्राप्त करने का हर तरह से। तो इस तरह से जो है वो उस गुरुकुल में सीखते हैं, जो भी कह रहे हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जो कुछ भी जो है आपको गुरु के रूप में बता सकूं उसके लिए। तो फिर इस तरह से वो सीखते रहते हैं। बट एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण प्रैक्टिस कर रहे थे तीर धनुष चलाने का, तो क्या हुआ, एक ग्वालन वहाँ से गुजर रही थी सिर के ऊपर कुछ रख करके, पता नहीं दूध था जो भी था। और उस समय के जो स्त्रियाँ होती थी वो नथुने पहनती थी बड़े बड़े, कान में भी और इसमें भी, तो बड़ा नथुना पहना हुआ था इतना बड़ा। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारा कर दिया है ना, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, फटाफट धनुष चढ़ाया, तीर निकाली और मारा एक तीर जोर से। ये दूसरा बाल लीला का वो बता रहा हूँ। तो उन्होंने तीर मारा, वो जो उसका नथुना था वो चिपक गया इसके अंदर, और ऐसा चिपका को चीख पड़ी कि मेरा तो अच्छा खासा बड़ा था, क्या हो गया, वो चिपक पड़ी, चीखने लगी क्या हो रहा है, रोने लग गई। तो भगवान राम ने फटाफट अपना धनुष निकाला, तीर चढ़ाई और फट मारा उसको, वे बड़ा हो गया, वो एज इट इज हो गया। तो वो जो स्त्री थी ग्वालन, वो देखने लगी है यहाँ तो कोई है तो है नहीं, आस पास कोई आदमी भी नहीं है। फिर देखो दो लड़के खड़े हैं छोटे छोटे बच्चे, गई उनके पास, तुमने देखा मेरे साथ क्या हुआ? क्या हमने तो किया है। तो वो ना बड़ी आश्चर्यचकित रही कि ऐसे कैसे कर सकते हो तुम तो मेरे पास भी नहीं आए, तुमने कैसे कर दिया। तो लक्ष्मण ने कहा दिखाऊं, तो कहा दिखाओ। तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने दोबारा बाण चलाया और उसकी नथुनी को उन्होंने खींच करके आकाश में उड़ा दिया। वो देखती रही बहुत चकित, ये क्या हो रहा है। फिर राम जी ने कहा चिंता मत करो। फिर दूसरी राम जी ने बाण चलाया, वो आकर के सीधे उसके नाक में दोबारा लपेट हो गया। पर ये जब ये चार तीर चले और चार, वो एक भी तीर ने उसको टच नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि एक भी तीर उसके उसके बॉडी में कहीं भी टच नहीं हुआ। तो ना बड़ी आश्चर्य, मतलब आश्चर्य में लग गया हम, उनको बड़ा आश्चर्य लगा कैसे हो सकता है। एनीवे उसके सामने हुआ था तो अब उसको बिलीव करना पड़ा कि ऐसा हो सकता है। तो उसके वो भगवान राम ने जो है वहाँ पर ये उसमें ये छोटे से बाल लीला में उनका एक ये वर्णन आता है कि उन्होंने कि ये भी वो करी थी। उसके बाद जो है थोड़े समय के बाद वशिष्ठ जी उनको कहते हैं कि भाई मैं मेरी तरफ से जो है पढ़ाई हो चुकी है पूरी, अब आप जाओ। तो और उस तकरीबन राम 12 वर्ष के हो गए थे और अयोध्या लौट आए और अयोध्या में जीवन बिल्कुल नॉर्मल हो गया कि सब ठीक है, राम लक्ष्मण चारों भाई आ गए, दशरथ जी बड़े प्रसन्न थे, सब कुछ ठीक हो गया। आप सोचने लगे कि आप जो है इसके लिए इसके विवाह के बारे में भी कुछ सोचता हूँ। उनके दिमाग में लगा कि इसका विवाह भी करवाना है, 12 वर्ष का तो हो गया है। तो अब पहले के समय में ऐसे ही होता था तो फिर सोच रहे थे। लेकिन तभी क्या होता है कि वो अपने एक दिन अपने राज्यसभा में बैठे हुए थे, वशिष्ठ जी, वामदेव जी, सारे मिनिस्टर्स बैठे थे, तो जो एक हाफता हुआ गार्ड अंदर चला गया गेट कीपर। तो बोला महाराज महाराज एक बहुत बड़े ऋषि आए हैं। तो हाँफते हुआ क्योंकि गार्ड ने जो है उनको रोक दिया था, वैसे वही गलती करी थी जो जय विजय ने की थी। वर विश्वामित्र ने संकल्प लिया हुआ था कि जब तक मेरा यज्ञ पूरा होगा नहीं होगा मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो वो बच गया था इसीलिए। तो दशरथ और जो उनके वशिष्ठ जी थे, क्योंकि अयोध्या में किसी बात की कमी नहीं थी इसीलिए कोई ब्राह्मण डायरेक्टली दशरथ तक पहुंचता नहीं था। कोई ब्राह्मण या कोई ऋषि जिनको पैसा चाहिए था, कुछ भी चाहिए था, वो खजांची से जा करके मांगता था और उनको मिल जाता था, तो दशरथ तक कोई अप्रोच नहीं करता था। तो आज कोई व्यक्ति डायरेक्टली कोई दशरथ तक अप्रोच कर रहे हैं तो उनको लगा कि निश्चित रूप से कोई, तो दशरथ जी खुद उतरे, वशिष्ठ जी और सब लोग गए और देखा तो विश्वामित्र जी खड़े हैं, तो उनको प्रणाम करके जो है वो उनको वापस लाए, अपने अंदर ले आए राज्यसभा में। बड़ी उनको बोले आपकी कृपा से सब जो है यहाँ पर हमारे राजभवन में सब कुछ ठीक है, आइए आइए, बहुत अवगत किया, खाली वाणी से बहुत उनका स्वागत किया। उसके बाद जो है फिर बिठाया तो उन्होंने फिर पूछा कि बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो विश्वामित्र ने एकदम से नहीं बताया राम को दे दो, कहा देखो राजन आप, मैं जानता हूँ अयोध्या मेरी हर तरफ से मदद करने को तैयार है और हर तरफ से मदद कर भी सकता है और अयोध्या के पास ये क्षमता भी है कि मदद करेगा, परंतु फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप वचन दो कि भाई मैं जो कुछ मांगूंगा आप दोगे। उन्होंने कहा इसमें क्या बात है, आप आपको वचन देता हूँ आप जो मांगोगे दूंगा, दे दिया वचन। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे ना आपका पुत्र चाहिए राम, और ये सुनना था कि दशरथ को लगा कि मेरे ऊपर किसी ने भाला मार दिया सिर के ऊपर, और जैसे सुना जैसे मान लीजिए इस पर बैठे हैं और सुनते ही बेहोश, एक घंटे में होश आया उनको और सब बैठे हैं, तब तक सब पूरी सभा बैठी हुई है। दोबारा फिर कहा कि राम को लेने आया हूँ, फिर वो बेहोश हो गए। अब वशिष्ठ जी ने थोड़ा वो किया, भाई महाराज ठीक से बात तो करो, आप तो बार बार जो है वो मूर्छित हो रहे हो। तो कहा ठीक है। फिर अब जो है वो विश्वामित्र और दशरथ में वार्तालाप होती है और ये वार्तालाप भी बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा कि मुझे, तो उन्होंने पूछा आपको किस लिए चाहिए राम, किस लिए चाहिए। पहले तो सुन के बेहोश हो गए थे, पूछा ही नहीं बात क्या है। तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ना एक यज्ञ कर रहा हूं और उस यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे आपके पुत्र चाहिए। तो कहा हमारा इतनी सी बात है, मेरी सेना ले जाइए, एक से एक बढ़िया सेना, जो जिस तरह की वो चाहिए आप ले जाइए यहां से। कहा लेकिन मुझे तो आपकी सेना चाहिए नहीं। कहा सेना नहीं चाहिए, तो कहा मुझे भी ले चलिए। और फिर जो दशरथ जी ने अपने बारे में थोड़ा बताया कि मैं कैसा योद्धा हूं, उन्होंने बताया कि मुझे कई बार इंद्र भी बुलाते हैं सहायता के लिए, तो आपके यज्ञ की रक्षा तो मैं कर पाऊंगा, तो आप मुझे लेके चलिए। कहा नहीं आप भी नहीं चाहिए, मुझे तो राम ही चाहिए। कहा महाराज आप राम से कभी मिले नहीं, आपने राम को कभी देखा नहीं, आप कैसे राम की शक्ति के बारे में जानते हैं कि राम यज्ञ की रक्षा कर लेंगे, और बताइए आपके वहां पर शत्रु कौन है, तो फिर जब उन्होंने वर्णन किया तो दशरथ और डर गए। कहा एक बड़े बड़े सुबाहु, मारीच, तारका, सुंद सबका नाम लिया, ये ऐसे ऐसे लोग हैं और इनका नाम दशरथ जी ने सुन रखा था, खास करके तारका का नाम। तारका जनरल एक्चुअली में एक यक्ष की बेटी थी, यक्ष की कोई संतान नहीं थी, उसने ब्रह्मा जी से तपस्या करी तो ब्रह्मा जी ने जो है प्रसन्न होकर के उसको कहा कि ठीक है तुम्हें संतान होगा, एक पुत्री होगी, लेकिन उस पुत्री के पास हजारों हाथियों का बल होगा। हमने अभी तक सुना है ना, आदमी में हजारों हाथियों का बल होता है, वर्ष पुत्री में भी हजारों हाथियों का बल था, जिसका नाम उसने रखा तारका। तो तारका का विवाह कराया किससे? सुंद से। सुंद एक असुर था बहुत बड़ा, क्योंकि इतने हजारों हाथियों का बल वाला कोई आम व्यक्ति तो मिलता नहीं, तो बोला राक्षसों में तो होगा ऐसा व्यक्ति, तो इसलिए उसकी शादी करवाई एक राक्षस से। तो फिर जो है उसके बाद अब कुंद के जो सुंद था, सॉरी सुंद नाम था उसका, सुंद के अंदर ये था कि वो पूरे उसको ख़त्म करना चाहता था, जो आसपास की जगह थी उसको ख़त्म करना चाहता था हर तरह से। तो फिर उस इसी मानसिकता से उसने जो है तपस्या करी थी, मतलब सॉरी उसने अपने पुत्र को उत्पन्न किया। तो सुबाहु और मारीच दोनों ये पुत्र भी ऐसे थे। तो एक बार सुंद ने गलती क्या करी कि अगस्त ऋषि के आश्रम पर अटैक कर दिया, और अटैक किया तो अगस्त ऋषि ने केवल अपने एक हुंकार भर के सुंद को खत्म कर दिया। अब सुंद तो गया, अब बचे कौन? दो बेटा और एक माँ, तारका और उसके दोनों बेटे सुबाहु और मारीच, और इन्होंने बदला लेने की ठानी। तो पूरा बहुत समय तक प्रयास किया बट अगस्त मुनि का कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो फिर उन्होंने कहा भाई दूसरे एरिया पर फोकस करो, ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है। तो उन्होंने दूसरे जो है वो थोड़ा जगह बदल ली और पूरा जो है वो करने का प्रयास किया। बाग उखाड़ कुछ भी करते थे, लोगों को बहुत सताते थे। तो सिद्धाश्रम जो है वहीं पर स्थित था, विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है और ये आश्रम अभी भी है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। ये जो है आश्रम अभी भी गंगा के किनारे बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक बक्सर जगह है, स्टेशन है, उस स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो मामा जी का आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है ये सिद्धाश्रम। तो उस सिद्धाश्रम में वहाँ अब वहाँ जाना, तो वो उसका जो तारका और उसके दोनों बेटों का जो एरिया था उस सिद्धाश्रम का आसपास का इलाका उसने चुन लिया और वहीं सारा उत्पात मचाते थे। तो ये बात जब उन्होंने बताई भरत को, उसको दशरथ महाराज को, दशरथ महाराज तो बिल्कुल डर गए। कह रहे महाराज मेरा बेटा अभी तो उसने शस्त्र विद्या पूरी तरह से ग्रहण नहीं किया और 12 साल का है, वो कैसे इसकी रक्षा करेगा? अब देख लो, लेकिन दशरथ का विजन क्या था? मटेरियल। अब विश्वामित्र का विजन स्पिरिचुअल था, वो भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे थे, वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख रहे थे। वो राम को प्रेम करते थे दशरथ, बट विश्वामित्र राम को जानते थे। आप समझ, दोनों में अंतर, एक व्यक्ति प्रेम कर रहा है और एक जो है जानता है। फिर वो टीचर थे, वो रिजल्ट ओरिएंटेड थे, ये फादर थे, ये लव ओरिएंटेड थे, पिता है, पिता को प्रेम, और उधर व्यक्ति वो रिजल्ट ओरिएंटेड था, मुझे तो राम चाहिए और राम से ही सारी चीज़ें करवानी हैं, है ना। तो बड़ा संघर्ष चला, बहुत बातचीत होती रही, अंत में जो बिल्कुल मान नहीं रहे थे दशरथ, और जो विश्वामित्र जो नाराज होने लगे कि तुमने रघुकुल का नाम खराब कर रहे हो, तुमने मुझे कहा था कि आप जो मांगोगे दूंगा और अभी मैं मांग रहा हूँ तुम दे नहीं रहे, मना कर रहे हो। तो रघुकुल में आज तक मैं कोई ऐसा राजा हूँ नहीं हुआ जो वचन दे के फिर गया हो, तुम पहले राजा हो दशरथ जो वचन दे के फिर रहे हो। आप दशरथ को लगा क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था। बोला एक अंतिम चाल और चली उन्होंने कहा देखो महाराज, 2 प्रपोजल उनके सामने रखे। हम पहले तो कह रहे हैं कि आपको पता है राम कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का। और शाम होती है ना, जब शाम जैसे शाम होती है राम की आंखें बंद हो जाती है, वो सो जाता है, वो कैसे रात भर आपके यज्ञ की रक्षा करेगा? आप मेरे से विश्वास नहीं है तो कौशल्या से पूछ लीजिए और वशिष्ठ जी बैठे हैं, वशिष्ठ से पूछ लीजिए। शाम को 6 बजे राम सो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो कैसे रात भर आपके यज्ञ की रक्षा करेगा, अब बताइए। पर विश्वामित्र इस बात से भी नहीं पिघले, इस बात से भी नहीं माने, तो उन्होंने एक और प्रपोजल रखा, आखिरी प्रपोजल रखा, ठीक है मैं राम को दे दूंगा आपको, परंतु महाराज मेरी एक शर्त है, मैं भी साथ चलूंगा और मेरी सेना भी साथ चलेगी। अब विश्वामित्र जो है वो कह रहे मुझे तुम्हारा ये प्रस्ताव भी मंजूर नहीं है, मैं तो केवल राम को ही ले जाऊंगा, ना तुम्हें ले जाऊंगा ना तुम्हारी सेना को चाहिए मुझे। और ये बहुत भड़क गए विश्वामित्र। अब देखिए जब दो व्यक्ति का हित टकराता है आपस में ना, जब दो व्यक्ति का ईगो क्लैश करता है, तो जो हारने वाला होता है, जो रिसीविंग व्यक्ति होता है, वो क्रोधित हो जाता है। तब लग गया विश्वामित्र को कि ये व्यक्ति तो अब मानेगा नहीं, तो उनको लगा अब हार रहा हूं तो क्रोधित हो गए, उठ गए, ठीक है नहीं देते तो कोई बात नहीं, जा रहा हूं। बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अभी वो ले रखा था, क्या बोलते हैं, संकल्प ले रखा था कि श्राप वगैरह नहीं दिया, लेकिन वो क्रोधित हो गए, ठीक है नहीं दे। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, जाते जाते कह रहे जब खड़े हो गए, एक बार अपने गुरु से भी पूछ लो, विश्वास जो है वशिष्ठ की तरफ इशारा कर दिया। और वशिष्ठ, वामदेव और सारी राज्यसभा बैठी हुई है और ये दोनों के बीच में डायलॉग चल रहा है, सब सुन रहे हैं, पर किसी ने, देखिए कितनी बड़ी बात है, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, इवन वशिष्ठ जी ने भी नहीं, कि ये दोनों की बातचीत करते मैं क्यों इंटरफेयर करूं, पर हम तो बिना मांगे दे देते हैं, प्रभु जी मेरे ख्याल से आप ऐसे कर लो ज्यादा अच्छा होगा ना। तो एनीवे वो उन्होंने जो है वो कहा, फिर विश्वा उन्होंने कहा वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज बताइए, तो वशिष्ठ जी ने मेडिएटर का काम शुरू किया और उन्होंने जो है समझाया उनको, दशरथ जी को, कि राम कोई साधारण बालक नहीं है, आप इशारा कर रहे थे, ये नहीं बताया कि भगवान है, इशारा कर रहे थे कि राम कोई साधारण बालक नहीं है, कृपा करके उन्हें जाने दीजिए। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि ये विश्वामित्र बहुत शक्तिशाली ऋषि हैं, ये राम की रक्षा करेंगे, उनको कन्विंस करना था कि राम को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वशिष्ठ दशरथ को प्रेम करते थे, बट दशरथ के साथ वशिष्ठ अयोध्या को भी प्रेम करते थे, उनको लगा कि व्यक्ति अगर नाराज हो गया तो हो सकता है अयोध्या को श्राप दे दे, तो अयोध्या से भी प्रेम करते थे, दशरथ से भी प्रेम करते थे। और फिर ये जरूरी नहीं है कि जो चीज़ दशरथ के लिए अच्छी थी वो अयोध्या के लिए भी अच्छा हो सकता है दशरथ के लिए अच्छा है राम को ना देना, पर अयोध्या के लिए वो ठीक नहीं था। तो उन्होंने मेडिएटर का काम शुरू किया और उन्होंने समझाया कि चिंता मत करिए, इनके पास बहुत शक्ति है, ये राम की रक्षा करेंगे। और फिर एक बड़ी बात वशिष्ठ जी बोलते हैं कि जब भी कोई महान व्यक्ति कहीं पर जन्म लेता है तो उसके माता पिता को उससे बिछुड़ने का जो क्या बोलते कष्ट है उसको उठाना ही पड़ता है, तो राम कोई साधारण बालक नहीं है, इसलिए इनसे सेपरेशन का दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा, तो कृपा करके आप राम को जाने दीजिए। तो मेडिएटर का जो काम है वो दोनों उनको समझाया, उन्होंने उन दोनों को पूरी बात समझा दी। और जो है उन्होंने विश्वामित्र से भी कहा कि आप राम की रक्षा करिएगा, क्यों अब वो पूरा उसने बताना, क्योंकि दशरथ को कन्विंस करना था कि बिल्कुल ठीक है वो इसमें। तो फिर दशरथ जी है वो मान जाते हैं, है ना, हालांकि वो अपने इस फैसले से खुश नहीं थे। कई बार हम अच्छे काम करके भी खुश नहीं होते हैं, पर अच्छे काम करके संतुष्टि मिलती है इसकी पूरी गारंटी है। आप अच्छा काम करके खुश होगे इसकी गारंटी नहीं है, पर अच्छे काम करके आपको संतुष्टि होगी इसकी पूरी गारंटी है। और यही था, दशरथ को लगा एटलीस्ट मैं कम से कम वशिष्ठ की बात तो मान रहा हूं और कम से कम मैं जो है वो विश्वामित्र की बात को अपना वचन को रखता हूँ विश्वामित्र की का, और मैं वशिष्ठ जी की बात भी रख पाऊंगा, मुझे इस बात की संतुष्टि है। उन्होंने विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों की बात को रखते हुए राम को ले जाने का आदेश दे दिया। हरे कृष्णा। 9:05 हो गए हैं। श्री प्रभुपाद की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे, किसी का प्रश्न हो तो बाद में पूछ सकते हैं, मुझे पता नहीं चला 9:05 हो गया इसके। हरे कृष्ण।